आज चिंतन करेंगे सभी मिलकर एकाग्रता। सबसे सुंदर टॉपिक है ये संसार के लिए, चाहे वो साधना का मार्ग हो, भाई थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कम करो, चाहे साधना का मार्ग हो, चाहे स्टडी का मार्ग हो, चाहे हम बाबा के महावाक्य सुनते हों, कुछ लिखने पढ़ने की बात हो, घरों में काम करने की ही बात क्यों न हो। मान लो छोटा सा काम, कोई बहन खाना बना रही है, उसमें भी एकाग्रता चाहिए या नहीं? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हम इसको बहुत गहराई से आज पहले चिंतन में लाएंगे। एकाग्रता से फायदे, सबसे बड़ा फायदा, रामनिवास जी आप चमक रहे हैं आज, देखो ये बुजुर्ग हो गए हैं, इट्टी के हो गए होंगे, हाँ, और चमक रहे हैं। तो मैं कहा करता हूँ 80 ईयर्स ओल्ड न कहो, 80 ईयर्स यंग। हमारे यहाँ सब 80 ईयर्स वाले यंग है ना, सीमा बहन आप भी हो जाएंगे। एकाग्रता का सबसे बड़ा फायदा, मैं शुरू करता हूँ एक और सभी चिंतन करेंगे। जिसके पास मन बुद्धि की एकाग्रता बहुत होगी, क्या होगा उन्हें आगे चल के, जब प्रकृति बहुत संघार करेगी, वो अगर संकल्प देंगे प्रकृति को शांत, तो प्रकृति शांत हो जाएगी। सबसे बड़ा अनुभव होगा एकाग्र चित्त आत्माओं को, ठीक है रामनिवास जी, बाबा के द्वारा कही हुई ये बात है। और हमारी एकाग्रता ऐसी हो कि हम अपने मन बुद्धि को जहां चाहें, आगे तो आपको पता है ना, जितना समय चाहें और जिस स्वरूप पर चाहें स्थिर कर सकें, जितना लंबा समय चाहें। मान लो हम चाहते हैं हम परम धाम में 10 मिनट तक रहें, हम चाहते हैं हम सूक्ष्म वतन में 10 मिनट तक बाबा के साथ रहें, हम चाहते हैं हम स्वर्ग में अपने सुंदर स्वरूप में 10 मिनट रहें, अपने फरिश्ते स्वरूप के द्वारा हम सेवा करें, तो हम कर सकें, ठीक है प्रोफेसर साहब तिकार भाई। सोचना है, एकाग्रता भी बहुत बड़ी शक्ति है और एकाग्र होने के लिए भी बहुत शक्ति चाहिए। कुछ शक्तियों की जरूरत एकाग्र होने के लिए है और फिर एकाग्रता बहुत बड़ी शक्ति बन जाती है। जो एकाग्रचित हैं वो संपूर्ण सफल हैं किसी भी फील्ड में। जिनके पास एकाग्रता है उनकी कार्य शक्ति, चिंतन शक्ति बहुत ज्यादा है, उनको बाबा से नई नई प्रेरणाएं आएंगी, इंग्लिश में जिसे इंट्यूशंस कहते हैं और बाबा टचिंग कहते हैं। टचिंग करेगा बाबा, टच करेगा हमें, हम उसे कैच कर सकेंगे, आगे चल के इन चीजों की बहुत जरूरत होगी। जब महाविनाश का समय होगा, अफरा तफरी हो जाएगी संसार में, हम किधर जाएं, क्या करें क्या न करें, इसके लिए हमें यथार्थ निर्णय की जरूरत होगी। तो एकाग्रता की शक्ति हमारी इस निर्णय शक्ति को, परख शक्ति को बहुत बढ़ाएगी। अब किसी को ख्याल आया कुछ, बोलो, किसी को याद आया हो क्या होगा एकाग्रता से? हाँ, बहुत अच्छी बात कही, एकाग्र चित्त आत्मा को मन चाही सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। मैं सुनाया करता हूँ क्लास में, मैंने बचपन में ही पढ़ा था कहीं, योग साधना की बुक में कि कोई योगी अगर 32 मिनट तक अपने मन को स्थिर कर दे तो उसे मन चाही सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। बहुत अच्छी बात है ये। सफलता हो चाहे दो सिद्धि हमारे पास बहुत बड़ी हैं, दो बहुत बड़ी सिद्धि। एक है संकल्पों की सिद्धि, दूसरी है बोलो बोल की सिद्धि। ये दोनों सिद्धियां आगे चलकर जब हमें संसार को बहुत कुछ देना होगा हमारे बहुत काम आएंगी। गीता के दूसरे अध्याय में आखिर के 15-16 श्लोक स्थिर बुद्धि पर हैं। संस्कृत में नाम दिया है स्थित प्रज्ञ। देखो गीता के बारे में ये बहुत अच्छी बात है कि अभी चर्चा प्रारंभ भी हुई है, आत्मा का ज्ञान दिया गया है और अर्जुन पूछता है कि हे भगवान स्थित प्रज्ञ योगी के क्या लक्षण हैं? अभी अर्जुन को योग के बारे में कुछ चर्चा नहीं दी गई, ये क्यों प्रश्न पूछ लिया? ये बहुत सारी बातों को सिद्ध करेगा गीता के भगवान के बारे में। तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं हैं, उस पर भी हम थोड़ी दृष्टि डालेंगे। हालांकि मुझे वो पढ़े हुए बहुत साल हो गए हैं, फिर भी मुझे कुछ कुछ याद है। और किसी को याद आए एकाग्रता से क्या होगा? बहुत बहुत गहरा ईश्वरीय सुख, जिसे अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, जिसके बाद आत्मा संतुष्ट हो जाती है। ये सुख बहुत जबरदस्त है। अगर 5 मिनट किसी को शरीरीपन पर एकाग्रता हो जाए तो ये सुख बहुत सुंदर हो जाता है। बाबा के स्वरूप पर 5-7 मिनट एकाग्र कोई हो जाए ये सुख बहुत गहरा हो जाता है। और जब हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी होती है तो हमारे विकर्म तेजी से नष्ट होते हैं, विकार तेजी से नष्ट होते हैं। तो बड़े बड़े लाभ हैं इससे। इसके लाभ को समझते हुए, कितनी उपयोगिता है इसकी हमारे जीवन में, इसको जानते हुए हमें इस पर बहुत ध्यान देना है। संगमयुक्त जीवन की सर्वश्रेष्ठ सफलता ही किसमें है? एकाग्रता में है। कोई 20 साल से ज्ञान में चल रहे हो लेकिन मन भटक रहा हो तो सुख नहीं भासता। और कोई 6 मास से चल रहे हो और मन बहुत स्थिर हो तो 6 मास भी बहुत लंबा काल हो गया। जिसे बाबा लंबा काल कहते हैं ना, उसको इस तरह हमें जानना चाहिए। हमारी लंबे काल तक स्थिरता रहे। अब हमें स्थिर करना है मन और बुद्धि को। आप में से जो बहुत अच्छे चिंतक भाई बहने हैं, चिंतन करते हैं, वो एक बात पे चिंतन करेंगे बिल्कुल व्यक्तिगत। मेरा मन किधर किधर भटकता है? क्योंकि जब तक हम अपना विश्लेषण नहीं करेंगे, आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस, तब तक हम मन की भटकन को रोक नहीं पाएंगे। सभी विचार करेंगे कौन सी बात मेरे मन को भटकाती है, बेचैन करती है, उसे अतृप्त करती है। जैसे किसी का मन इच्छाओं के कारण भटकता है, किसी का मन इनसिक्योर फीलिंग के कारण भटकता है, किसी का मन दूसरे के व्यवहार और अपमान के कारण भटकता है। अपमान सूचक शब्द कोई बोल दे बहुत भटकता है। और किसी का मन ईर्ष्या द्वेष के कारण भटकता है, मान की इच्छा के कारण भटकता है, काम क्रोध अहंकार मोह के कारण भटकता है। सारे विकार मन को भटकाते हैं। किसी को काम विकार भटकाता है, किसी को क्रोध, किसी को लोभ इच्छाएं, किसी को मोह ममता, किसी को मैं और मेरा अहंकार, बाकी छोटे छोटे विकार भी बहुत भटकाते हैं। इसलिए गीता के उन्हीं श्लोकों में एक बहुत अच्छी बात है जो मुझे सदा ही आकर्षित करती आई है, आपको वो अच्छी लगती है, उस पर भी ध्यान देना है। हे अर्जुन, जो आत्मा आत्मा में ही संतुष्ट है, जो आत्मा आत्मा में ही संतुष्ट है वही स्थित प्रज्ञ है, स्थिर बुद्धि है। इसका अर्थ तो सब समझ गए ना। आत्मा आत्मा में ही संतुष्ट, अर्थात हम अपनी प्राप्तियों में ही संतुष्ट हो जाएं। अपनी संतुष्टता के लिए जो मनुष्य दूसरों की ओर देखता है वो कभी स्थिर बुद्धि नहीं हो सकता, न संतुष्ट हो सकता। क्या विचार है? ठीक है, अपनी संतुष्टि के लिए जो दूसरों की ओर देख रहा है वो कभी न संतुष्ट न स्थिर बुद्धि, उसका मन भटकता ही रहेगा। सब चिंतन करेंगे मुझे भटकाने वाली कौन सी तृष्णा है। कंपैरिजन की भावना भटकाती है, कंपैरिजन तुलना, या दूसरों से सूक्ष्म कामनाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। मैं एक अनुभव सुना दूं आपको बिना किसी का नाम लिए, क्योंकि नाम का मुझे भी नहीं पता। मुझे किसी माता ने फोन किया, किसी की व्यक्तिगत बात नहीं हम कर रहे हैं, पर एक बहुत अच्छी चीज हमें जानने को मिलती है। आज ही किया कि मैं और मेरी देवरानी हैं, परिवार बड़ा है, इकट्ठे रहते हैं सब, सास ससुर सब। कहा जब मेरी देवरानी बीमार होती है तो सब उसकी केयर करने में लग जाते हैं, उसकी पूछताछ, उसकी सेवा, कोई दवाई दे रहा, कोई फल ला रहा, कोई स्पेशल भोजन बना रहा, और मैं बीमार होती हूँ तो कोई नहीं पूछता, इससे मैं बहुत परेशान हूँ। वो अपनी बात सुनाए बहुत ज्यादा, मैं सुनता था उसकी कि ये जो कहना चाहती है कह ले। मैंने कहा पर तुम ये भूल गई कि तुम्हारी केयर स्वयं भगवान करता है, ये तो याद ही नहीं ना। जो अपनी केयर के लिए मनुष्यों की ओर देख रहा है वो खुश होगा या दुखी? वो दुखी होगा। मैंने कहा तुम सोचती क्यों मैं बीमार हूं और सब मेरी केयर करें? आयु छोटी थी उसकी, सोच लें, सभी बहनें खास सोच लें इस पर, दूसरों की ज्यादा केयर हो रही है, हमारी नहीं हो रही है। दूसरों को बहुत पूछा जा रहा है, हमें कोई नहीं पूछता। ये बात भी मन को विचलित बहुत करती है। पर अगर नशा हो, कौन सा, हमें पूछने वाला कौन है? मनुष्य तो पूछ के करेंगे भी क्या। मान लो किसने दवाई भी खिला दी, हॉस्पिटल भी ले गए, थोड़ी केयर भी कर दी, लेकिन बीमारी बढ़ती गई तो? और जिसको भगवान पूछता हो उसको हर तरह की मदद हो जाएगी ना, आत्मसंतोष भी बहुत होगा। हम पूरी तरह बाबा की ओर देखें। ये मैंने एक आपको उदाहरण दिया कि व्यर्थ संकल्पों का बहुत सारा कारण क्या है। फिर मैंने उसे सीधा ही कहा, अरे बहन जी अब इस ईर्ष्या को छोड़ दो, क्यों परेशान हो रही हो, आपकी परेशानी का कोई कारण है ही नहीं, केवल आपकी ईर्ष्या और कंपैरिजन है। अरे ऊपर की ओर देखो, भगवान मिला है उससे सुख लेना है, उसको छोड़ के मनुष्यों की ओर देख रहे हो तो दुखी हो रहे हो। सब अपने पर दृष्टि डालेंगे, मेरे मन को भटकाने वाली बात कौन सी है। मैं और ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, मुझे दूसरा भी क्लास है। तो दूसरी चीज है हमारे पास बुद्धि, मैं एक बहुत अच्छा चिंतन आपको देना चाहता हूँ। बाबा ने बहुत बार कह दिया है, बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो, स्वच्छ करो इसको। इसको जो किसी किसी ने डस्टबिन बना दिया है, जो आए अपना कचरा डाल जाए, वो स्थिर बुद्धि नहीं हो सकते। अब हमें बातों से प्रेम या अपनी एकाग्रता को बढ़ाने से प्रेम है, सब चिंतन करेंगे। देखिए, ये बुद्धि मनुष्य के पास सबसे बड़ी निधि, सबसे बड़ा खजाना, ऐसा कहें इस समय हम सबके लिए हमारी बुद्धि परमात्म वरदान, जिसमें क्या क्या भरा हुआ है, दिव्यता, पवित्रता। इस बुद्धि को यदि हम दिव्य बना दें, सोच लो आगे चिंतन करना है सबको, तो आने वाले समय में हमारी दिव्य बुद्धि विश्व कल्याण के काम में लगेगी। मुझे बाबा की एक बहुत अच्छी बात याद आई, मुझे याद भी रहती है बहुत, कि देखो जादूगर लोग हाथ की सफाई से कई चमत्कार दिखाते रहते हैं ना, होता तो कुछ भी नहीं, केवल हाथ की सफाई, और हमें लगता है क्या वंडरफुल, बड़ा भारी जादूगर है। बाबा ने कहा बुद्धि की सफाई कमाल करेगी, हाथ की सफाई जादूगरी दिखा सकती है, बुद्धि की सफाई कमाल करेगी। इसे यहाँ बहुत सारे भाई बहने बैठे हैं, तिरुपुर सारथी ग्रुप के बहुत बैठे हैं, जिसको इस संसार में चमकना हो, चमकना है ना महेश, उसे अपनी बुद्धि को डिवाइन बना देना है, दिव्य स्वच्छ। लक्ष्य रख लो, किचरा तो 2500 साल से डालते आए, 500 साल से ज्यादा डाला होगा, अब सफाई का समय है। जब सफाई का समय है तब भी कोई किचरा डालता रहे घर में, माताएं सोचो घर की सफाई करते हैं ना, अब तब भी कोई किचरा डालता रहे, आप सफाई कर रहे हो, पीछे से बच्चे डाल रहे हो, बच्चों की पिटाई होगी या नहीं? बाबा तो हमारी पिटाई नहीं करेगा, खैर पर कैसा लगता है कि हम सफाई कर रहे हो, कोई गंदगी कर रहा हो? सफाई तो सबको प्रिय होती है ना, देखो किसी के घरों में भी ज्यादा गंदगी हो तो अच्छा नहीं लगता, वाइब्रेशंस अच्छे नहीं होते, इसलिए हर व्यक्ति सफाई करता है। बचपन में लोग कहा करते थे, हम छोटे थे ना बच्चे, तो सफाई पे ध्यान नहीं देते थे, अरे कुत्ते से सीखो, बैठता है तो पूंछ से साफ करके बैठता है, देखते थे हम भी के बात तो ठीक है, कुत्ता बैठ रहा है तो पूंछ से झाड़ू लगा रहा है, क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है? तो हम सब बुद्धि की सफाई करें, बना लो लक्ष्य आज से बुद्धि की सफाई, महान आत्माओं को बुद्धि की सफाई करनी है, जिनको संसार को बहुत कुछ देना है उनको सफाई करनी है, जो ईश्वरीय खजानों से बुद्धि को भरना चाहते हैं उसे इसे खाली करना ही पड़ेगा। अगर गंदगी होगी तो ईश्वरीय खजाने वहां ठहरेंगे नहीं, जो बाबा कहते हैं ज्ञान कहाँ नहीं ठहरता, बुद्धि सोने का बर्तन चाहिए, अपवित्र बुद्धि में ज्ञान ठहरता नहीं है। बोलो पसंद है बहनों को बुद्धि की सफाई? अभियान चलाओ, 7 दिन का अभियान, अभियान चलाते हैं ना लोग, शहर की सफाई करनी है, अपने सिटी की, अपने टाउन की, हम सब अभियान चला दें बुद्धि की सफाई। बुद्धि में कुछ भी भर लिया है उसको बाहर फेंक देना है, किसी के लिए गलत भावना भर ली हो, किसी के लिए बदले की भावना भर ली हो, किसी के लिए घृणा और ईर्ष्या का भाव भर लिया हो, निकाल दे उसे, वो हमें कष्ट देता रहेगा, देगा या नहीं, या पसंद है ये चीजें? पसंद तो किसी को भी नहीं। हम बाबा के पास आए हैं, भविष्य की तो बात छोड़ो, वर्तमान बहुत ज्यादा ईश्वरीय सुख लेने के लिए हम अपने को स्वच्छ करें। ठीक है, आगे चलें। कौन हो सकते हैं स्थिर बुद्धि? कौन हो सकते हैं? मैं सुना देता हूं, आप फिर सोचना। जिनको व्यर्थ में रुचि बिल्कुल न हो, न व्यर्थ देखना न व्यर्थ सुनना, मुख्य दो बातों पे ध्यान देना है। कई लोग व्यर्थ बोलते नहीं लेकिन देखते बहुत हैं, सुनते बहुत हैं, उससे बुद्धि गंदगी से भरपूर हो जाती है तो भटक जाती है। मन और बुद्धि का बहुत गहरा कनेक्शन है। मन संकल्प और बुद्धि है तीसरा नेत्र, दोनों को स्थिर करना है। संकल्प शक्ति भी स्थिर हो जाए और तीसरा नेत्र भी स्थिर हो जाए। जो लोग असंतुष्ट रहते हैं, जिनके पास जीवन में लंबे काल की असंतुष्टता है, वो भी स्थिर चित्त नहीं हो सकते। सोच लें सभी, लंबे काल की असंतुष्टता हमारे पास न हो। जिन्होंने अपनी खुशी को लंबे समय से खत्म किया है किसी भी कारण से, कुछ पास्ट की घटनाओं से, किसी ने लंबा काल अपमान किया है, कुछ बहुत ज्यादा सहन करना पड़ा है, तो हम स्थिर बुद्धि नहीं हो पाते। उसे हटाना है। अब एक उदासीनता ऐसी भर गई है कईयों के जीवन में कि उससे वो आत्मा निकल नहीं पा रही है। मेरे पास एक और बहुत अच्छा फोन था कल, बहुत अच्छी चीजें हैं कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो गई। मैं पास्ट में बहुत रहता हूँ और भविष्य में बहुत रहता हूँ, चिंताएं बहुत हैं, वर्तमान में मैं रहना ही नहीं जानता। किसी भाई का था, अधर कुमार का, मेरे से रहा ही नहीं जाता वर्तमान में, इसलिए मुझे जीवन का कोई सुख नहीं है। पास्ट को पूरी तरह भूलना पड़ेगा। सोच लें और कारण। आप, मैंने आपको ये चिंतन का विषय दिया। क्लास के बाद सभी बहुत अच्छी तरह से टॉपिक पे चिंतन किया करें। मैं पांच बातें मैं सोच के आया आज। कई दिन से मुझे इस पर बहुत अच्छी अनुभूतियां हो रही हैं, इसलिए मुझे ख्याल आया मैं एकाग्रता की बात आपके पास रखूं। चित्त को शांत करने का पहला सबसे सरल और सबसे सुंदर तरीका है अशरीरीपन। आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक दिन के लिए देख सकते हैं, हर घंटे में 3 बार अभ्यास कर लो। मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ, यहाँ बैठी हूँ। 3 बार, चाहे 10-10 सेकंड हो जाए, केवल आधा मिनट हो जाए तो बहुत अच्छा। और शाम तक देखो चित्त कितना शांत होता है। ऐसा देरीपन। दूसरा वो अभ्यास जिसकी चर्चा हम बहुत करते हैं और आप सब भी उसका बहुत अभ्यास करते हैं, स्वमान। नशे से मन शांत हो जाता है। बोलो आगे चलो। तीसरा, है मथन से, ठीक है, इसको हम देंगे नाम मुरली में रस लेना, उस पर चिंतन करना। मन को एक नई दिशा मिलती रहेगी, वो व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा। देखिए ये एकाग्रता उसकी ही ज्यादा बढ़ेगी जिसने मन को व्यर्थ संकल्पों से जितना मुक्त किया है। मैं एक चीज और जोड़ दूं बीच में ही, एकाग्रता का सीधा संबंध प्योरिटी से है। जिसकी प्योरिटी जितनी अच्छी होती जाती है, मन शांत होकर निर्मल होकर एकाग्र होता जाता है। और आगे एक बात पर हम ध्यान दें, आप सबको अनुभव है, कईयों को रोज का होगा, कईयों को भी होगा आधा आधा, अमृत वेला यदि बहुत आनंद में बीत जाए तो कितने बजे तक मन एकाग्र रहता है? कम से कम 10 बजे तक। तो अमृत वेले और मुरली का रस मिल जाए तो 10 बजे तक का हमारा समय तो परमानंद में बीतता है। उसका सुख लेना है, मिस नहीं करना है। देखिए आप सबको अनुभव भी है, मुझे भी है। हम 5 बजे योग करें सवेरे, 6 बजे करें और 4 बजे करें, अंतर होगा दोनों में। भले ही 4 बजे उठ के थोड़ा हल्का योग लगे तो भी आत्मा बहुत तृप्त होगी, और 6 बजे बहुत पावरफुल भी लगे तो लगेगा कुछ मिस हो गया आज। तो सवेरे उठकर एक बार अच्छी तरह प्रभु मिलन, बिल्कुल भगवान से मिलन हो गया, उसका हाथ सिर पर आ गया। और अगर किसी का किसी भी कारण सवेरे नहीं होता तो दूसरा टाइम है, दूसरा अमृत वेला शाम को 6 से 8 के बीच। ये समय भी बहुत सुंदर होता है, 6 से 7.30, 1 घंटा आप इसमें निकाल दें, वैसे ही अनुभव फिर करें, इसको भी बहुत अच्छा महत्व दें, तो इसका इफेक्ट भी जीवन पर बहुत गहरा पड़ेगा। एकाग्रता बढ़ाने के लिए चौथी चीज, पांचवी आ गई। आप करके देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा, एक दिन है शरीरीपन का, दूसरे दिन आप करें सबको चमकती हुई आत्मा देखने का। एक छोटा सा संकल्प ले लें, ऊपर देखेंगे तो महाज्योति दिखाई दे, नीचे देखें तो चमकती हुई मणियां दिखाई दें। एक दिन करके देखें, शाम तक कितना अच्छी एकाग्रता की अनुभूति होती है, चित्त शांत हो जाएगा। क्योंकि भले ही हमारी देहिक दृष्टि न हो, पर दिखते तो देह ही है, लेकिन देह देखते देखते मन कहीं ना कहीं विचलित होता है। विचलित माना है, जरूरी नहीं व्यर्थ संकल्प चलते हो, पर मन भटकता है। आत्मिक दृष्टि होते ही बहुत अच्छी अनुभूति होगी। एक बहुत पावरफुल बाबा का महावाक्य आपको याद दिला दूं, अव्यक्त बाबा का है, जब तुम्हारी दृष्टि नेचुरली आत्मा पर जाने लगेगी, इतना अभ्यास हो जाए कि जिसको देखें आत्मा ही दिखाई दे, तब संसार की दृष्टि तुम चेतन चमकते हुए सितारों पर आएगी। हमें संसार को आकर्षित करना है, अपने लिए तो नहीं, वो हमारी ओर आकर्षित करेंगे होंगे और हम ले जाएंगे उन्हें परमात्म मिलन की ओर। हम उन्हें अध्यात्म से भरपूर करेंगे तो ये आत्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा होगा। साकार में मुरली में आया, आत्मा देखना माना दूसरों को करंट देना, तो एक मन वाइब्रेशंस की सेवा बहुत अच्छी होती है। इसका सभी अभ्यास करेंगे। और इसमें लास्ट बात है, बहुत अच्छा अभ्यास करना योग का, उससे मन एकाग्र रहता है। 3 बातें हमें इस बार अभ्यास करनी है, एकाग्रता भी बहुत बढ़ेगी उससे, और तीनों ही मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस हैं। पहली प्रैक्टिस, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। अपने स्वरूप को देखेंगे, अपने को बहुत तेजस्वी आत्मा देखेंगे और संकल्प देंगे, मैं इस देह की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक, मन की मालिक, बुद्धि की मालिक, संस्कारों की मालिक हूँ, इन सबको संकल्प दे दो मैं तुम्हारी मालिक हूँ, तुम्हें मेरे आदेश मानने ही हैं। रोज दो, देखो क्या होता है। पहले लगेगा भला ऐसे कहने से क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर मालिकपन का नशा चढ़ेगा और ये सब हमारे कर्मचारी, हमारी सूक्ष्म शक्तियाँ हमारे आदेश का पालन करने लगेंगी। बहुत सुंदर अनुभव रहेगा। दूसरा अभ्यास, सर्वशक्तिवान का हम आह्वान करेंगे और देखेंगे बाबा धीरे धीरे उतरते उतरते हमारे सिर के ऊपर आकर छत्र छाया बन गया। बहुत अच्छी फीलिंग, सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के हम नीचे बैठे हैं। दूसरा अभ्यास, अब ये अभ्यास आप याद रखेंगे, सारे दिन में 10 बार अवश्य करने हैं, सवेरे शाम अलग। तीसरा अभ्यास, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, बहुत सुंदर अभ्यास है। किसी भी स्थान के वाइब्रेशंस चेंज करने हो तो ये अभ्यास, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य और ज्ञान सूर्य से बाबा आंखों के सामने है, सामने से उसकी किरणें पड़ रही हैं, बहुत सरल एकाग्रता हो जाएगी। ये तीन अभ्यास चिंतन के साथ सभी बहुत अच्छी तरह करेंगे। अब चर्चा को हम यहीं समाप्त करेंगे।